Hare Krishna.
तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सत्वतं पथि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यदा. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees.
इसलिए व्यक्ति को एकाग्र मन से होकर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए जो कि भक्तों के रक्षक हैं.
याद अनुध्याशिना युक्ता कर्मग्रंथि निर्बंधनम् चिन्तन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्. With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work, karma, by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message?
भगवान का स्मरण करके व्यक्ति जो है कर्मों के बंधन को काट सकता है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि उसके बारे में ध्यान नहीं देगा?
शुश्रूषौषधानस्य वासुदेव कथा रुचि सन्महात्सेवया विप्र पुण्यतीर्थनसेवनात्. O twice born sages, by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva.
जो महात्मा पुरुष हैं उनकी सेवा करने से व्यक्ति बहुत बड़ी सेवा करता है और वासुदेव की कथा में रुचि पैदा होती है.
Here it is being explained. That remembrance of the Supreme Personality of Godhead is the sword that can cut through all the bondage which is the cause of suffering in this world.
यहाँ पर यह समझाया गया है कि भगवान का स्मरण जो है एक तलवार के समान है जो कि इस भौतिक बंधनों को काट सकता है जो कि सारे दुखों का स्रोत है.
The karmic condition that we are all in is herein compared to a very hard knot.
ये जो कर्मों के जो बंधन हैं, उसको एक बहुत ही कठोर गांठ से तुलना की गई है.
This knot is impossible to disentangle.
और ये ऐसी गांठ है कि इसको खोलना जो है असंभव है.
Why is it so difficult? Because you know when you tie a knot in a rope, the more you pull both sides, the tighter and tighter and tighter the knot becomes.
क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कोई गांठ बांधते हैं और दोनों तरफ से खींचते हैं, जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा वो कठोर बन जाती है.
Material existence is designed in such a way that people are working so hard, day and night, just pulling this rope to make the knot tighter and tighter and tighter.
भौतिक अस्तित्व ऐसा बनाया गया है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और खींच रहे हैं और इसके द्वारा ये गांठ और भी ज्यादा कठोर और कठोर बनती जा रही है.
In the name of material progress and sense gratification, we are actually putting ourselves in a condition of bondage that becomes more and more difficult to ever be released from.
भौतिक प्रगति के नाम पर और इंद्रिय तृप्ति के नाम पर हम अपने आप को ऐसे बंधन में डाल रहे हैं कि जिससे निकलना और भी ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है.
Birth after birth, we have been dedicating our whole lives to tighten this knot.
और जन्म जन्मांतर से हम अपना पूरा जीवन इसलिए समर्पण कर रहे हैं कि जिससे गांठ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है.
एंड फाइनली व्हेन वी हैव द एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर साधुस एंड वी हैव enough realization through various sufferings in this world, we realize that this knot is choking us.
जब हमें साधुओं का संग मिलता है तब हम जो है ये समझ पाते हैं कि ये जो गांठ है ये हमको बांध के रख रही है.
In a simple way, Srila Prabhupada once explained that material life is like a man who has a stick and he's hitting himself on the head as hard as he can and then he's wondering, why does my head hurt so much?
ये भौतिक जीवन की तुलना श्री प्रभुपाद जी करते हैं. एक व्यक्ति के पास एक लकड़ी है और लकड़ी से अपने सर को पीट रहा है और फिर सोच रहा है कि ये इतना मेरे को दर्द क्यों हो रहा है.
And if a sadhu comes and tells him, your head hurts so much because you're hitting yourself on the head with a stick.
और साधु आकर ये बताता है कि आपका सर इसलिए जो है दर्द हो रहा है क्योंकि आप अपनी लकड़ी से अपने आप को मार रहे हैं.
He will say, no, no. I'm hitting myself on the head with a stick because I'm trying to relieve the pain of my head.
तो वो ये कहता है कि मैं इसलिए अपने आप को मार रहा हूँ जिससे मैं सर के दर्द को दूर करना चाहता हूँ.
The pain's already there. I'm trying to beat it out.
दर्द है उसको मैं निकालना चाहता हूँ इसलिए.
But the more they hit, the more it hurts.
लेकिन जितना ज्यादा मारते हैं उतना ज्यादा दर्द होता है.
But they just cannot understand that what they're working so hard for to relieve the pain is the cause of their pain.
वो ये बात नहीं समझ पाते कि जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे हैं दर्द को दूर करने के लिए वही चीज उनके दर्द का कारण बन जाता है.
Material life means that nobody, either by themselves, by their education, by their excellent material qualities, by the help of others, no one can disentangle himself from this situation as long as they continue the process of sense gratification.
भौतिक जीवन का मतलब यह है कि किसी भी प्रयास से जब तक व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा रहता है तब वो इस बंधन से जो है मुक्त नहीं हो सकता.
Because sense gratification, Bhagavatam explains, is like chewing that which has already been chewed.
भागवतम बतलाते हैं कि इंद्र तृप्ति ऐसे कि चबाए हुए को फिर से चबाना.
Srila Prabhupada used several examples of this. In the West, people eat this chewing gum, and there's some sugar in it, and they eat it, and all the sugar goes away, and all that's left is just tasteless gum.
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ये chewing gum की. तो chewing gum में थोड़ा सा शक्कर होता है और जब थोड़ी देर स्वाद देने के बाद वो चला जाता है और सिर्फ गम ही बच जाता है.
Since you cannot swallow it, you just take this tasteless, useless thing, and you stick it somewhere.
क्योंकि उसको आप निगल नहीं सकते, इसलिए आप जो उसको निकाल के किसी जगह पर चिपका देते हैं.
I remember when I would go to school, under the desk there would always be this. Maybe in India they do like this too, I don't know.
भारत में महाराज बता रहे हैं कि जब वो अमेरिका में स्कूल में थे तब वो इस तरह से जो है वो बेंच डेस्क के नीचे लगा देते थे.
Prabhupada said material existence means taking that gum that has been chewed to the maximum degree and it's already dried out and you take it and you take it out from the under of the desk and you start chewing.
रुपाई बताते हैं भौतिक जीवन ऐसा है कि वो बिल्कुल चबाए हुए चीज को वो मेज के नीचे से निकाल कर फिर से आप चबाने का प्रयास कर रहे हैं.
There's nothing there but the hard labor of chewing.
उसमें और कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ज्यादा मेहनत ही है चबाने की.
And then you become frustrated and you stick it under the desk.
और फिर आप दुखी हो जाते हैं और आप फिर से उसको मेज के नीचे लगा देते हैं.
And then the next day you come back and think maybe there's something left.
फिर अगले दिन आकर आप सोचते हैं कि शायद इसमें कोई स्वाद होगा.
This is probably the best thing I learned in my whole education. That it's useless to try to chew the chewed. Anyways, Prabhupada also said in India here they have the sugar cane and sometimes it falls from the back of the bullock and someone picks it up and chews it and then the fibers he spits out. And then somebody else comes along to see if he can find something left in these fibers.
Prabhupada ji bhi udaharan dete hain ki jo hai samjho bail gaadi se ganne ka danda gir jata hai, koi usko chabata hai aur chabane ke baad usko fek deta hai kuch bhag, to koi dusra vyakti aata sochta hai ki shayad isme kuch ras hoga aur chabane ka prayas karta
hai. And this is the way our most valuable human energy is being lost.
Isi tarah se hamari mulyavan manav jeevan jo hai nasht ho raha hai.
Human life is the rare privilege to become freed from the knot of material existence and to realize the eternal blissful nature of the soul.
मानव जीवन एक अवसर है कि ये इस बंधन से मुक्त होना और आत्मा के सही आनंदमय स्वभाव को पहचानना.
But we don't have time. We don't have time for spiritual life.
लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं होता.
Because we're too busy spending the whole day pulling this rope and tightening the knot.
क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं, अब रस्सी को और ज्यादा खींच रहे हैं, इस तरह से गांठ को और ज्यादा कठोर बना रहे हैं.
We don't have time to chant the holy names because our mouth is too busy strenuously chewing that which has already been chewed in the form of material sense pleasures.
क्योंकि हमें जो भगवान का नाम जप करने का समय नहीं है, क्योंकि हम जो चबाए हुए चीज को इंद्र तृप्ति के रूप में फिर से चबाना चाह रहे हैं.
And the worst thing is that everyone around us is doing the same thing, trying to convince us that actually it's nice.
और सबसे बुरी बात यह है कि हमारे आसपास के लोग हमको सबको सिखा रहे हैं कि ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज है.
They're all frustrated in their desires. They're striving so much to get something more. Every now and then they get some little drop of pleasure and they're telling us how wonderful it is.
वे सभी लोग भी दुखी हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं आनंद के लिए. मुश्किल से एक बूंद प्रयास पानी मिलता है उनको, लेकिन उनको बता रहे हैं कि ये बहुत सुंदर है.
If we want to properly make spiritual advancement, we have to take these words from Srimad Bhagavatam.
अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत के शब्दों को सुनना चाहिए.
Sutta Goswami is explaining, with sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead.
सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि तलवार को हाथ में लेकर व्यक्ति भगवान को स्मरण करते हुए इस बंधन को काट सकता है.
There is no means of release from the bond of this world save and except remembering Krishna.
इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, श्री कृष्ण का स्मरण करना.
Because when we remember Krishna, we associate with Krishna. And Krishna is pavitra, he is all pure. By his remembrance, we become purified from all of our previous karmic activities and their reactions, and we become purified from all of the attachments to illusions of this world.
क्योंकि कृष्ण जो है वो पवित्र हैं. जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो न केवल हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि इस दुनिया के जो भौतिक जो माया है उससे भी मुक्त हो जाते हैं.
And therefore, every valuable moment of this human life, which is so precious, should be utilized not to further entangle ourselves, but to disentangle ourselves by Krishna consciousness.
इसलिए मानव जीवन का हर एक क्षण जो है इसलिए उपयोग नहीं करना चाहिए कि और बंधन में फंसे, लेकिन इस बंधन से मुक्त होने के लिए उपयोग करना चाहिए.
Modern education without a spiritual basis is simply the process of tightening the knots within the hearts of young children.
और जो आजकल की जो शिक्षा है वो ऐसा ही एक तरीका है कि वो जो कि इस बंधन को और ज्यादा कठोर बना देता है बच्चों के बीच में.
Unless people have a spiritual direction and a reason why to go on living in remembrance of Krishna, all of our so-called activities to try to help one another is destroying each other.
अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है तो हम जो प्रयास करें एक दूसरे को मदद करने के लिए, वो वास्तव में एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं.
And in this world, this goes in the name of love.
और इस दुनिया में ये प्रेम के नाम पे चला जा रहा है.
Love is based on real knowledge.
सच्चा प्रेम जो है वो ज्ञान पर आधारित होना चाहिए.
Knowledge is to understand that we are not these bodies; we are the eternal souls.
ज्ञान का मतलब है जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन नित्य आत्मा हूँ.
And we are part of Krishna.
और हम श्री कृष्ण के अंश हैं.
Knowledge means to pursue realization of our true spiritual identity.
ज्ञान का मतलब यह है कि अपने सही आध्यात्मिक को पहचानना.
And to connect or dovetail every aspect of our life with our real true spiritual identity.
और हमारे जीवन का हर एक पहलू को अपने सही आध्यात्मिक पहचान से जोड़ देना.
Of being the eternal servant of Krishna.
श्री कृष्ण के नित्य दास के स्वरूप में.
So this is the greatest need in human society.
यही सबसे बड़ी आवश्यकता है मानव समाज की.
The propagation of spiritual consciousness.
आध्यात्मिक चेतना का प्रचार करना.
For this reason,
our Guru Maharaj was so anxious that we distribute his books.
इसलिए गुरु महाराज जो है बहुत उत्सुक थे कि हम उनकी पुस्तकों का वितरण करें.
Because within these books are given the real purpose of life and the way by which we can achieve it.
क्योंकि उन पुस्तकों में बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कैसे इसकी प्राप्ति की जा सकती है.
And it is very necessary that either directly by reading or by hearing someone explaining properly that we regularly bathe our consciousness with this transcendental knowledge.
ये बहुत आवश्यक है कि या तो हम खुद पढ़ें या उनसे पढ़ें जो समझा सकते हैं और इस तरह से अपनी आत्मा को नहलाएं.
I remember one time I was living at New Vrindavan and one guest, he came from the southern part of America, very simple man. He just came very quiet and he was just looking all around the community.
Maharaj batla rahe hain ki New Vrindavan mein jab the tab ek bar ek atithi wahan par aaya dakshin America se aur bade shanti se idhar udhar dekh rahe the.
He just looked like a very ordinary person, just looking all around. He didn't know where he was going, what he was doing. He was just walking.
वो एक साधारण व्यक्ति नजर आ रहे थे और उनको पता नहीं था कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस इधर उधर घूम रहे थे.
So I approached him and I said, "Good morning. Is this the first time you've been here?" He said, "Yes."
तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या पहली बार आए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ.
I said, "Have you ever been to any temple of Krishna before?" He said, "No, this is the first time I've ever been to a temple."
तो उन्होंने पूछा कि क्या आप पहले आप मंदिर में गए हैं किसी दूसरे? बोले नहीं, पहली बार मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ.
He said, "I said, have you ever met a devotee before?"
उन्होंने पूछा कि क्या आप पहले भक्त से मिले हैं?
He said, "No, I've never seen a devotee before. You're the first devotee I've ever seen in my whole life."
बोले मैंने कोई भक्त को भी नहीं देखा है, लेकिन ये पहला भक्त है जो आपको मैं देख रहा हूँ.
So we began to talk and I was explaining, we took him to Prabhupada's palace and was telling him about the regular tour of Prabhupada's palace, about how the palace was built and about the different types of marbles and all these things.
To unko Prabhupada ji ke mahal mein le gaye, bata rahe the ki kaise wo marble kaise banaya gaya tha.
And then we came to Prabhupada's room and he looked at Prabhupada and I started explaining something about Prabhupada to him.
तो प्रभुपाद जी के कमरे में गए और उनके बारे में महाराजों को समझाने लगे प्रभुपाद जी के बारे में.
And then I told him that every day Prabhupada taught us we should chant the holy names of Krishna.
बोले कि प्रभुपाद जी सिखाया कि हमें रोज भगवान का नाम हरे कृष्णा लेना चाहिए.
He said, "I'm already chanting 16 rounds every day."
तो बोला कि मैं तो 16 माला रोज जप करता हूँ.
I said, "You're chanting 16 rounds?" He said, "Yes." I said, "What are you chanting?" He said, "I'm chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare."
तो बोले 16 माला इस तरह से जप करते थे.
And I said, "Really, you're chanting like this every day, 16 rounds?" He said, "Yes. It takes me almost 2 hours every day." And he said, I said, "What else do you do?" He says, "I don't have illicit sex. I don't take intoxication. I don't eat meat. And I don't gamble. And whatever I eat, I first make sure it's prasad." I said, "What's prasad?" He said, it's when you offer food to Krishna with devotion." I said, "Where did you learn these things?" He said, "I also learned that I'm always supposed to remember Krishna and Ram all the time." And I'm always remembering them because I'm always chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I said, where did you learn these things? He said, I read it in that book, the Bhagavad Gita. Huh. I said, where did you get this Bhagavad Gita? And he said, huh. He said, I'm a very top construction welder. Very high paid. He does the most sensitive jobs of welding in big, big industrial construction work. He said, so one day I was doing my laundry at some place and I was eating watermelon. You know what watermelon is? Oh, you're supposed to translate. Whatever I said.
तो ये एक भक्त का बता रहे हैं कि वो जो उनसे उनसे मिलने के लिए आए थे तो वो पूछ रहे थे कि ये वहाँ तक हमने आपको बताया कि प्रभुपाद जी के रूम में आते हैं और बोलते हैं कि आपको जप करना चाहिए हरे कृष्णा का, तो बोलते हैं कि मैं जप करता हूँ और वो इस तरह से हरे कृष्णा की जगह हेर कृष्णा, हेर कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हेर हरे राम, हे राम, हे राम, इस तरह से
ना, ना, राम
राम. तो उन्होंने पूछा कि आपको ये मंत्र कहाँ से, ये कैसे और क्या करते हैं आप इसके अलावा? तो उन्होंने बताया कि हम चार नियम का पालन करते हैं, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना. और उसके अलावा तुम्हारा ने पूछा आपने सब कहाँ से पढ़ा, तो बोला ये किताब है बगैर बगैर गीता, बगैर गीता,
बगैर
गीता. और वो बता रहे थे कि वो एक कंस्ट्रक्शन में कार्य में वेल्डर हैं और वेल्डिंग करते थे, तो वो एक कलिंगर खा रहे थे वाटरमेलन. अभी आगे महाराज बताएंगे.
So he told me this was the most fateful moment of his whole life when he was eating watermelon.
बोले उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था जब वो कलिंगर को खा रहे थे.
And there was a garbage can.
वहाँ पर एक
कचरे का. In India you don't have garbage cans so much.
वहाँ पर एक कचरे का डिब्बा था. भारत में तो ज़्यादा होता नहीं है वैसे.
You just put everything on the street.
लोग सड़क पे ही फेंक देते हैं.
The whole city is a garbage can.
पूरा शहर ही ऐसा है कचरे का डिब्बा.
But in America they have garbage cans.
अमेरिका में garbage.
You just translate while you're speculating.
Sometimes we are speaking. I don't.
So he said, as he was eating the watermelon, he was sitting spinning the seeds in the garbage can.
और वो बीज जो है वो खाते खाते बीज फेंक रहे, थूक रहे थे उस समय.
And accidentally, the watermelon slipped out of his hands and fell deep down into the garbage can.
और अचानक क्या हुआ, गलती से वो पूरा जो कलिंगर है वही उसमें कचरे के डिब्बे में गिर गया.
So he reached down to try to find the watermelon.
और वो नीचे जाके ढूंढने लगे कि कहाँ पर चला गया.
Underneath the other garbage, he was reaching.
सब कचरे के नीचे खोजने लगे.
And he found it.
और उसको मिल गया.
And he picked it up.
और उसको बाहर निकाला.
And he said. He told me it wasn't the watermelon, but it was a book called Bhagavad Gita.
तो वहाँ कलिंगर नहीं था बल्कि ये भगवत गीता था.
I said it's called Bhagavad Gita. He said I've been reading that book for 3 years, and I never knew how to say it.
तो बोलने लगे कि मैं 3 साल से इसको पढ़ रहा था, लेकिन मुझे किस तरह से इसका उच्चारण करना है वो नहीं मालूम था.
And then he said, but am I chanting that mantra properly?
तो बोलने लगे कि मैं मंत्र ठीक से जप कर रहा हूँ क्या?
And I said, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
He said, I've been chanting 16 rounds for 3 years now, but I never knew how to say it, because I never met a devotee. I'm only saying what I'm reading.
बोले कि मैं 3 साल से जप कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कोई भक्त नहीं मिला, सिर्फ जो पढ़ सका वही कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कैसे उच्चारण करना.
He said, but I never knew there was such thing as devotees till I saw you.
बोलते हैं कि मेरे को मालूम था कि भक्त क्या होता है आपको देखे देखने से पहले.
Somehow or other he found out about New Vrindavan. So he said, I've come to surrender.
बोले कि मैं समर्पण करने के लिए आया हूँ New Vrindavan में.
He said, I want to surrender everything.
बोले मैं सब कुछ समर्पण करना चाहता हूँ.
He said, this is what I read, that I'm supposed to surrender everything.
मैंने ये पढ़ा है कि हमें सब कुछ समर्पण करना चाहिए.
And then he said, I read, Sarva Dharman Parityajya. And they said it all different ways. He said, you're supposed to abandon everything and just surrender to Krishna. This is what I learned from reading this book, so I want to surrender everything to Krishna.
बोलने लगे कि मैंने जो है ये पढ़ा है कि हमें सब धर्मों को छोड़ के कृष्ण की शरण में आना चाहिए और यही मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ.
So he had a house trailer, he had two cars, he had all about $50,000 worth of welding equipment. He said, am I allowed to give all this to my guru? Because I read you're supposed to give everything to your guru.
उनके पास एक ट्रेलर, दो कार और $50,000 पैसा था. वो बोले कि क्या मैं सब गुरु को दे सकता हूँ क्योंकि कैसा कहा गया है कि गुरु को देना चाहिए सब कुछ.
I said, yes, you are supposed to do like this.
तो मैंने बताया कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए.
He said, I have permission. I said, I'm sure you can get permission.
तो पूछने लगे मुझे क्या आज्ञा है. तो बोले हाँ जरूर आपको आज्ञा है.
So this is an example of someone who never met a devotee before, but was living perfectly as a devotee for 3 years and completely and properly understood our whole philosophy. Didn't understand the proper pronunciation. Just by coming in contact with one of these wonderful books.
ये एक उदाहरण है उस व्यक्ति का जो हालांकि किसी भक्त से नहीं मिले लेकिन सब नियमों का पालन कर रहे थे क्योंकि एक पुस्तक उन्होंने पढ़ ली थी.
So this is the power of transcendental knowledge.
ये दिव्य ज्ञान की शक्ति है.
And this is the greatest service that we can offer to humanity is by somehow or other influencing people's lives by which they could live according to this transcendental knowledge.
और यही सबसे बड़ी सेवा है मानवता को कि अगर हम लोगों को ये ज्ञान दे सकें जिससे कि वो दिव्य ज्ञान के अनुसार जीवन बिता सकें.
The world is suffering so terribly because of a lack of proper understanding of the goal of life.
ये दुनिया में सब लोग दुख भोग रहे हैं क्योंकि उनको जीवन का सही इच्छा उद्देश्य जो है वो मालूम नहीं है.
Lord Chaitanya Mahaprabhu told a story, you all know it, about when Narada Muni was walking through the forest.
नारद मुनि एक बार जंगल से गुजर रहे थे.
And he saw all around him animals that were half killed and they were screaming in pain.
उन्होंने ऐसे जानवर देखे जो कि आधे मरे हुए थे और दर्द के मारे चिल्ला रहे थे.
There were arrows in parts of their body that made them suffer but not die.
ऐसे तीर थे कि जो उनके शरीर में लगे हुए थे उसको दुख दे रहे थे लेकिन उसके कारण वो मरते नहीं थे.
And they were just groaning and screaming.
वो बहुत चिल्ला रहे थे और रो रहे थे.
And Narada was thinking, who could be so cruel to do these to these innocent, life-loving animals?
Narad Muni सोचने लगे कि ये कौन है जो कि इस सारा जो है दर्द देगा जानवरों को.
Then he came across a hunter.
और उनको एक शिकारी मिला.
He was a very, very evil-looking man.
बहुत ही दिखने में बहुत क्रूर व्यक्ति.
And this hunter, he had a bow and an arrow in his hand. And Narada, what Narada did is by his mystic power, he started freeing these animals from the arrows and setting them free.
Narad Muni apne shakti ke dwara un sab janwaron ko jo hai teer se mukt karne lage, unko mukt karke chhodne lage.
So the hunter was very angry. He said, who is doing this? Narada said, who is half killing these animals? He said, me, I am the one. He said, it has taken me It is the tradition of our family that is being passed down to find great pleasure in watching other living entities suffer because of our power.
तो नारद मुनि जब पूछा कि ये कौन व्यक्ति है जो ऐसा दर्द दे रहा है तो वो जो शिकारी था वो कहने लगा कि ये मैं हूँ और ये हमारी परंपरा है कि हम जो है लोगों को जानवरों को दर्द देते हैं.
He said, my father and grandfather and great grandfather have taught me how to half kill animals.
मेरे पिताजी मेरे दादाजी और उनके भी पिताजी जो है वो इस तरह से जानवरों को आधा मारते हैं.
And the louder they scream, the more I am very happy.
और जितना ज्यादा जोर से वो चिल्लाते हैं उतना ही मैं ज्यादा खुश होता हूँ.
So Narada explained that do you know that there is a law of karma?
नारद मुनि ने पूछा कि आपको मालूम है कि ये कर्मों का नियम है?
And by Narada Rishi's mystic power, he revealed to this hunter his future lives.
और अपनी शक्ति के द्वारा नारद मुनि ने उनको भविष्य के जीवन दिखाए.
And each one of these animals was coming to him and inflicting exactly the same pain that he caused them upon him.
और हर एक जानवर जिसको उन्होंने जो है दर्द दिया था, वही जानवर आकर उसी प्रकार का दर्द जो है उस हिथियारी को दे रहा था.
And this hunter realized that my whole future is going to be full of suffering and death.
तो वो समझ गया कि मेरा पूरा भविष्य दर्द से और मृत्यु से भरा हुआ है.
And he said to Narada, what do I have to do to free myself from this?
वो नारद मुनि से पूछने लगे कि इससे मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए.
And Narada said, first you have to break your bow.
नारद मुनि बोले पहले अपना धनुष तोड़ डालो.
Which means you have to absolutely give up all your materialistic activities from this day on.
इसका मतलब यह है कि आज से सब भौतिक कार्यों का त्याग करना होगा.
He said, how can I go on living if I break my bow? This is the only way I know how to get food.
बोले मैं जीवित कैसे रहूंगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि मुझे भोजन प्राप्त हो सकता है.
And Narada said, if you live with faith and devotion to Krishna, he will provide everything for you. You need not worry.
नारद मुनि बोले कि अगर भगवान में श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जीवन बिताओगे तो वो सब कुछ आपको दे देंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.
This is very symbolic.
ये बहुत लक्षणिक है.
Before we can really take to spiritual life seriously, first we have to have the association of such compassionate devotees, and from their words we have to develop faith in Krishna.
पहले हमें साधुओं का संग होना चाहिए और उनके शब्दों से जो है हमें श्री कृष्ण में श्रद्धा पैदा करनी चाहिए.
Because from the material point of view, giving too much time to Krishna consciousness means that we're jeopardizing our material life.
ये भौतिक दृष्टि देखा जाए तो अगर हम अपना समय कृष्ण भावना के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा भौतिक जीवन नष्ट हो सकता है.
Therefore, we cannot take to Krishna consciousness unless we have faith that ultimately Krishna will provide everything for us if we make him satisfied.
ये जब तक हम नहीं कर सकते, जब तक हमको विश्वास नहीं हो कि कृष्ण को संतुष्ट करने से भगवान सब कुछ दे देंगे.
At the beginning, there's what is called a leap of faith.
इसीलिए कहा जाता है कि एक श्रद्धा का जो है छलांग लगानी पड़ती है.
When you take to Krishna consciousness, there's some risk.
इसमें भी कोई जो है थोड़ा जोखिम हो सकता है.
But what happens to my material life?
मेरे भौतिक जीवन का क्या होगा?
I have to have faith that Krishna will protect me.
मुझे श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे.
So by the kind association of Narada, this hunter whose name was Magrari, he broke his bow.
नारद मुनि के संग से मृगरारी शिकारी ने अपने धनुष को तोड़ डाला.
निताय गो प्रेमानंदि
हरि बोल.
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. And then Magrari said, now I hope my profession is finished. What should I do?
मृगरारी बोले, अभी तो मेरा धंधा खत्म हो गया, अब क्या करूं?
And Narada Muni replied, now you should constantly chant the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो नारद मुनि ने उनसे यही कहा कि आप जो है भगवान का नाम कीर्तन करिए. हरे कृष्णा.
So Magrari bowed down at the lotus feet of Sri Narada, and he said, yes, from this day on I will always remember Krishna by chanting his holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो मृगारी ने यही कहा कि अभी से मैं अपना हमेशा जो है अपना धनुष को तोड़ दूंगा और बस भगवान का नाम स्मरण करता रहूंगा. हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. So after taking nice instruction from his Gurudev, Magrari became very peaceful. and very saintly. He built a little hut for himself, and he would sit there throughout the day chanting the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare.
अपनी एक कुटिया बनाई और वो कुटिया में रहकर जो है साथ में रहकर पूरा समय भगवान का नाम लेने लगे।
So one day Narada Muni was walking with his friend Parvat Muni.
एक बार नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे।
And he said, I want to visit one of my disciples. His name is Mugrari.
और उन्होंने कहा कि मैं अपने एक शिष्य को मिलना चाहता हूँ जिसका नाम है मृगरारी।
So as they were approaching the bhajan kutir of Mugrari, Mugrari came out to offer his obeisances to his Gurudev.
तो जैसे ही उसकी भजन कुटी के पास पहुंचे तो मृगरारी बाहर आकर अपने गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए दौड़े।
But as he was walking, he saw some ants crawling on the ground in front
of him. जैसे वो चल रहे थे तो रास्ते में उनको कुछ चींटियां दिखाई पड़ी।
So he stopped and he very patiently waited for the ants to cross the road.
और वो रुक गए और बहुत देर इंतजार किया कि चींटी जो है वो रोड से पार हो जाए।
And he was very gently brushing them to the side so that he would not injure even a single one of their tender limbs.
और धीरे धीरे उनको जो है अलग कर रहे थे जिससे कि उनके छोटे से अंग को वो हानि नहीं पहुंचाए।
And when Parvat Muni saw this, he became very happy.
पर्वत मुनि ने देखकर बहुत खुश हुए।
He said, this is the power of the association of a great sadhu, that even the most wicked, cruel hunter of all times will not even harm an ant.
बोले कि ये जो है सत्संग का स्वभाव है कि बड़े साधु के संग का कितना बड़ा क्रूर जो शिकारी है वो एक चींटी को भी दर्द नहीं देना चाहता।
So this is the process given in the great scriptures and by the great devotees of how to cut the knot of material existence.
तो ये तरीका है जो कि महान संतों और ऋषियों द्वारा दिया गया है कि कैसे भौतिक अस्तित्व की गांठ को काटना है।
How to remove ourselves from this process of repeatedly chewing that which has already been chewed.
कैसे हमको ये जो तरीका है चबाए हुए के चबाने से कैसे मुक्त हो सकते हैं।
To remove ourselves from this vicious cycle, we must always remember Krishna.
इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए।
And how do we always remember Krishna?
और हम हमेशा कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं?
By hearing the proper knowledge of the wonderful books of Srila Prabhupada and the great acharyas.
ये जो श्रील प्रभुपाद और महान आचार्य हैं इनकी महान पुस्तकों को पढ़ने से।
By associating with true sadhus.
सच्चे साधुओं का संग करने से।
And through the association of devotees and through properly understanding the scriptures, we always come to the same conclusion.
सत्संग के द्वारा और शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा हमारा यही एक निष्कर्ष निकलता है।
That in this age of Kali Yuga, the association of devotees and the chanting of the holy names is the means by which we can always remember Krishna and cut the knot of material bondage forever.
साधुओं का संग करने से और ये भगवान का नाम स्मरण करने से कीर्तन करने से यही एक तलवार है जिसके द्वारा हम भौतिक अस्तित्व को काट सकते हैं।
So let us always chant the holy names.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
For further details of this cassette, please contact Radhanath Swami Tape Ministry, Sri Sri Radha Gopinath Mandir, International Society for Krishna Consciousness.